श्री साई राम साई वचना अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम्
देव भगवान श्री राम के कमल चरणों पर कोटि कोटि प्रणाम। राम छोटा सा नाम है, राम रा ओ मा कहा जाता है। राम शब्द का उच्चारण करने से जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। रा का अर्थ है अग्नि, मां का अर्थ है अमृत। अग्नि हमारे समस्त पापों को भस्म कर देती है और फिर हमें मिलता है भक्ति का अमृत, ज्ञान का अमृत, मोक्ष का अमृत। कभी विचार किया आपने, हजारों वर्ष से राम नाम की चर्चा हो रही है। गांव गांव में राम लीलाएं होती हैं, राम को याद किया जाता है। रामचरितमानस का पाठ संपूर्ण भारत में होता है। ये राम हमारे लिए क्या मायने रखता है आप जानेंगे इस भजन के बाद।
साई रामं नमामि
शिरसा नमामि रामं पुटपर्ति साई रामं नमामि
शिरसा नमामि रामं पुटपर्ति साई रामं नमामि
शिरसा नमामि रामं
कुलतिलकम् दशरथतनयम् कौसल्या हृदयात्मशोभितम् रघुवंशाम्बुधि रत्नदीपिकम् वैकुण्ठान्वित शेषवासिनम्
वैकुण्ठान्वित शेषवासि
శిరసాన్నమామి రామం రామం పుట్టపర్తి సాయి రామం నమామి
శిరసాన్నమామి రామం పుట్టపర్తి సాయి రామం నమామి
కౌశిక శిష్యం తాతక హంతం యజ్ఞయాగాది రక్షిత కవచం
కౌశిక శిష్యం తాతక హంతం యజ్ఞయాగాది రక్షిత కవచం
సోదరత్రయ పరిసేవక శుభగణ రూపం
సోదరత్రయ పరిసేవక శుభగణ
ఆజాను బాహుం అరవింద నేత్రం
ఆజాను బాహుం అరవింద
నేత్రం శిరసా నమామి రామం పుట్టపర్తి సాయి రామం నమామి
శిరసా నమామి రామం పుట్టపర్తి సాయి రామం నమామి
గౌతమ సతి శాపం శీఘ్ర విముక్తం మారీచ సుబాహు గర్వదహంతం
గౌతమ సతి శాపం శీఘ్ర విముక్తం మారీచ సుబాహు గర్వదహంతం
శివధను భంగం శ్రీధర రామ
శివధను భంగం శ్రీధర రామ
జానకీ మనోరథం జగన్నాథనాథం
జానకీ మనోరథం జగన్నాథనాథం
శిరసాన్నమామి రామం పుట్టపర్తి సాయి రామం నమామి
శిరసాన్నమామి రామం పుట్టపర్తి సాయి రామం నమామి
నగర వినాశక హేతు భీకర రాక్షస రావణ కాళ రాత్రం
నగర వినాశక హేతు భీకర రాక్షస రావణ కాళ రాత్రం
సీతా సమేత సశాంతి పాలకం
సీతా సమేత సశాంతి
ఆత్మజ పరిసేవిత పావన పాదం
ఆత్మజ పరిసేవిత పావన పాదం
శిరసాన్నమామి రామం పుట్టపర్తి సాయి రామం నమామి
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 జయ జయ శిరిడి సాయి రామ
జయ
జయ ప్రశాంత సాయి రామ
జయ
జయ ప్రేమ సాయి రామ 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 శిరసా నమ రామం పుట్టపర్తి సాయి రామం నమామి
कहा जाता है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी दिन में 12 बजे जब सूर्य बिल्कुल सर के ऊपर होता है उस समय भगवान राम का जन्म हुआ राजमहल में बहुत सुंदर वातावरण था। सूर्य चमक रहा था, आसमान साफ था। कहते हैं जब भगवान राम, जो भगवान विष्णु के सातवें अवतार थे, उनके जन्म पर चंद्रमा रो रहा था। पहली बात, राम का जन्म हुआ सूर्य वंश में। दिन में 12 बजे जब सूर्य बिल्कुल सर के ऊपर होता है, चंद्रमा दर्शन नहीं कर पा रहा था। भगवान राम ने पूछा चंद्रमा से, भाई क्या बात है? चंद्रमा बोले, आपका जन्म सूर्य वंश में दिन में हुआ, मैं आपका दर्शन नहीं कर पा रहा था। क्या मेरे भाग्य में आपका दर्शन नहीं है? कहते हैं भगवान राम बोले, ऐसा क्या बोलते हो? अगले अवतार में तुम्हारे वंश में आऊंगा। चंद्रमा बोले, अगले अवतार में युग के बाद, बहुत लंबा समय है। कहते हैं भगवान राम ने वचन दे दिया कि मेरे नाम के साथ तेरा नाम जोड़ा जाएगा, नाम पड़ गया रामचंद्र। और भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण चंद्रवंशी हुए। ओ भगवान कृष्ण का पैदा हुए रात को 12 बजे, अष्टमी वाले रात को, कारागृह में। मौसम में मूसलाधार वर्षा हो रही थी, बिल्कुल विपरीत। यहां पर हमने दो शब्दों का प्रयोग किया है, सूर्य वंश और चंद्रवंश। राम है सूर्य वंशी, कृष्ण है चंद्रवंशी। राम का जन्म हुआ दिन में 12 बजे, भगवान कृष्ण का रात को 12 बजे। भगवान राम जन्मे हैं महल में और भगवान कृष्ण कारागृह में। भगवान राम सूर्यवंशी है, केवल इस पर ध्यान दीजिएगा। सूर्य का अर्थ है बुद्धि। बुद्धि अगर शुद्ध नहीं है तो हमारे कर्म शुद्ध नहीं हो सकते। चंद्रमा का अर्थ है मन। मन जो है विचारों की गुत्थी, मन जो है सारी वासनाएं हैं। श्री कृष्ण के आने से पहले बुद्धि की शुद्धि आवश्यक है, इसलिए भगवान राम पहले आए ताकि हम मर्यादा का पालन करते हुए भगवान राम के चरित्र को अपना आदर्श मानते हुए अगर उस पे चलते हैं, हमारे बुद्धि की शुद्धि होती है। जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो मन अपनी मनमानी नहीं कर सकता, मन धर्म के रास्ते पे चलेगा। क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है, जो जीवन है, मन से चल रही है। जो मन चाहता है, जो हृदय चाहता है, जो दिल चाहता है, हम वो करते हैं। हम उस चीज को पाना चाहते जो मन कह रहा है, कभी ये सोचते नहीं है ये सही है ये गलत है। केवल इच्छा पूर्ति के पीछे संसार में भोग की इच्छा लेके हम पूरे संसार में भ्रमण करते रहते हैं। उन बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से, माफ कीजिएगा, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। अगर बुद्धि, द डिस्क्रिमिनेशन पावर, द पावर ऑफ चूजिंग राइट एंड रॉन्ग, अगर शीतल हो, शुद्ध हो, प्योर हो, पवित्र हो, तो मन तक पवित्रता के तरंगे पहुंच जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, रामचरितमानस हमें प्रत्येक अध्याय में, प्रत्येक चौपाई में कोई ना कोई संदेश दे रही है। रामचरितमानस का आरंभ होता है बालकांड से, हम सब का जीवन शुरू होता है बालकांड से। बच्चे सबको अच्छे लगते हैं क्योंकि बच्चे के भीतर पाप नहीं होता, अभिमान नहीं होता, उसमें छल कपट नहीं होता। और अच्छी बात तो यह है कि महत्वपूर्ण बात तो यह है कि माँ सदैव बच्चे का ख्याल रखती है। बच्चा सरल होता है, निष्कामी होता है, निर्दोषी होता है। इसी प्रकार से अगर हम निर्दोषी बन जाए, निर्विकारी बन जाएं, हमारे भीतर छल कपट ना हो, तो क्या हमारे परमात्मा एक माँ का रूप धारण करके हमारी रक्षा नहीं करेंगे? बालकांड हमें एक पाठ पढ़ाता है, बी सिंपल, सरल बनो, बी सिंपल एंड सिंसियर। दूसरा अध्याय अयोध्या कांड, जिसमें राजे अभिषेक की तैयारी होती है। विघ्नेश्वरी अयोध्या में पहुंच जाती है, माता के कई भगवान दशरथ से दो वरदान मांगते हैं कि राम को वनवास मिले, भरत को राज्य। अयोध्या कहां बसी है? सरयू नदी के किनारे। सरयू भक्ति रूप है, अर्थात अयोध्या भक्ति के पास बसती है। भक्ति का अर्थ है लव फॉर गॉड। अयोध्या कांड प्रेम प्रदान करता है। अयोध्या कांड में भाइयों का प्रेम दिखाते हैं। कहते हैं जो अयोध्या कांड का पाठ नित्य करता हो, उस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, भाइयों में प्रेम बढ़ जाता है। लड़ाई झगड़ा कलह कहां से आरंभ होती है? धन प्रतिष्ठा को लेके। यहां पर भगवान राम दिखाते हैं इक्वेनिमिटी, इक्वल माइंडनेस। एक पल बोला गया, बेटा तुम कल यहां के राजा बनोगे, राज्य अभिषेक होगा, और अगले ही दिन बोल दिया, नहीं बेटा सॉरी, माफ कीजिएगा, आपको 14 वर्ष के लिए वन को जाना है। भगवान राम के चेहरे पर तनिक बर्शकन नहीं आई। हालांकि दशरथ महाराज ने अपने मुख से नहीं बोला, हे राम तुम 14 वर्ष के लिए वनवास जाओ, माता कैकेयी ने वरदान मांगा था, लेकिन टू ऑनर द वर्ड्स ऑफ द फादर, उनके पिता के शब्द वचन झूठे ना जाएं, उन्होंने सबको त्याग दिया। तीसरा अध्याय अरण्यकांड, यहां पर प्रभु राम चित्रकूट का त्याग करके आगे जाते हैं। अतिऋषि के आश्रम में पधारते हैं। कहने का तात्पर्य, परमात्मा कब पधारते हैं? जब मन में वासना ना हो। अरण्यकांड में या अरण्यकांड को पढ़ने से मन से वासना निकलती है। अरण्य का अर्थ क्या है? तप करना, अर्थात जीवन में बिना तप के दिव्यता नहीं आती। यू कैन नॉट रियलाइज द डिविनिटी विदाउट पेनेंस। पेनेंस का अर्थ क्या है? तप का अर्थ क्या है? तप का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने शरीर को कष्ट दें, 12-12 घंटे समाधि लगा के बैठ जाएं। तप का अर्थ है अपने संयम में रहना, द कंट्रोल ऑफ द सेंसेस, अपनी इंद्रियों पर संपूर्ण नियंत्रण रखना। राम भगवान ने कभी पर स्त्री पर अपनी नजर नहीं टिकाई। तप का अर्थ है अपने मन को कंट्रोल में रखना। वनवास में उन्होंने क्या भोजन किया? फल खाए खाली। कहने का तात्पर्य है कंट्रोल योर डाइट, उस प्रकार का भोजन करें जो आपको संयम में रहने के लिए प्रेरित करे। कहते नहीं है यू आर व्हाट यू ईट, जैसा अन्न वैसा मन। तप का अर्थ है उस प्रकार का भोजन करें जो आपको आध्यात्मिक रास्ते में आगे जाने के लिए प्रेरित करे, आपकी सहायता करे। मन में काम उत्पन्न ना करे, मन में वासनाएं उत्पन्न ना करे। वह कैसा भोजन है? यू हैव टू डू द रिसर्च, आपको समय शोध करना होगा। तप का अर्थ है आपकी जीभ पर कंट्रोल हो। कुछ इस प्रकार के शब्द अगर आपके मुख से निकल जाएं जो औरों के हृदय को चीर दें। कहते नहीं है 2.5 इंच की जीभ है 6 इंच के 6 फीट के आदमी को मार देती है, बिना हड्डी की जीभ। तप का अर्थ है हैव टोटल कंट्रोल ऑन द सेंसेस। सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, विचार करना होगा आपको। तो अरण्य कान हमें बताता है अगर आप तप करके अपने आप को इतना ऊंचा उठा लें तभी आपको शबरी के दर्शन होते हैं जो नवदा भक्ति की प्रतीक है। कृष्णकंदा कांड 4th अध्याय जी, वो शिव की मैत्री होती है, सीता जी की खोज होती है। यहां हनुमान जी के दर्शन होते हैं, हनुमान जी से मित्रता होती है, जो हनुमान जी ब्रह्मचर्य और संयम का प्रतीक है। सुग्रीव का अर्थ है सुंदर कंठ, जिसका कंठ सुंदर हो राम जी के मैत्री उसी से होती है। लेकिन सुग्रीव अकेला कुछ नहीं कर सकता, आपको हनुमान की सहायता चाहिए, आपको करेज चाहिए, आपको साहस चाहिए, ब्रह्मचर्य की शक्ति चाहिए, तभी आपको कोई सीता तक ले जाएगा। पूरी रामायण की चर्चा नहीं कर रहे हैं, समय कम है। जस्ट द एसेंस ऑफ द चैप्टर्स, हर अध्याय का एक छोटा सा इंसिडेंट लेके आपके सामने रखा जा रहा है। कृष्णकंदा कांड के अंदर ही माता सीता के आभूषण मिलते हैं। जब रावण सीता को उठा के ले जा रहा होता है, माता सीता अपने आभूषण नीचे फेंकती हैं। और लक्ष्मण जी केवल वही आभूषण पहचानते हैं जो माता सीता के पायल होती हैं, और कोई आभूषण नहीं पहचानते। राम जी उनको कंगन दिखाते हैं, गले का हार दिखाते हैं, कुंडल दिखाते हैं, नहीं पहचानते, क्योंकि उन्होंने कभी सीता माता को चरणों के ऊपर नहीं देखा। दैट शोज द रिस्पेक्ट टू द वुमन, किस प्रकार से हमें स्त्री का सम्मान करना चाहिए। 5th अध्याय सुंदरकांड, जो हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका जाते हैं, लंका को भस्म करके आ जाते हैं। संसार समुद्र को पार करने के लिए, सीता जी की परत भक्ति के दर्शन करने के लिए आपको हनुमान जी चाहिए। हनुमान जैसा साहस चाहिए, हनुमान जैसा ब्रह्मचर्य चाहिए, हनुमान जैसी शक्ति चाहिए, हनुमान जैसी आपको डिवोशन भक्ति चाहिए। सागर पार करते बीच में सुरता रास्ता रोकती है, बाधा बना डालती है। सुरता क्या है? वासनाएं, वासनाओं से परे हटना होगा। जीवन को सुंदर बनाना हो तो भक्ति भर बनाना होगा। सीता जी पराभक्ति हैं, पराभक्ति वहां मिलेंगी कहां पर? अशोक वन में, जहां पर शोक ना हो। फिर आता है लंका कांड, जहां पर रावण का वध होता है। रावण को कौन मार पाता है? राम। रावण क्या है? दशानन, जिसके 10 सिर हैं, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर ईर्ष्या। विचार कीजिएगा, 6 आंतरिक शत्रु, कहते हैं 6 इनर एनिमीज। उसके बाद क्या आती हैं? 4 चीज और भी हैं, विचार कीजिएगा आप। मन, बुद्धि, अहंकार, चित, ये 10 स्तर हैं। जब ये 10 स्तर कट जाते हैं तब रावण मरता है, अर्थात हमारे भीतर का रावण, हमारे अंदर बसा हुआ रावण। कमाल की बात जो है, रावण के 10 सर थे, 20 आंखें थी, 20 की 20 आंखें एक स्त्री पे थी, केवल माता सीता के ऊपर। हमारी 2 आंखें हैं लेकिन हमारी दृष्टि सब स्त्रियों के ऊपर है, हम उनसे बड़े रावण हुए। रावण ज्ञानी था लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान को परिवर्तित नहीं किया, अपने जीवन में उतारा नहीं। मरने के बाद रावण ने लक्ष्मण जी को उपदेश दिया, देव प्रीति, पाप प्रीति, संग नीति। देव प्रीति का अर्थ है लव फॉर गॉड, पाप प्रीति का अर्थ है फियर ऑफ सिन, संग नीति का अर्थ है मोरालिटी इन सोसाइटी। उत्तरकांड में राम जी वापस पहुंच जाते हैं अयोध्या। जो रावण को मारता है उसी का उत्तरकांड सुंदर होता है, वही राज्य करता है। जीवन को सुधारने का प्रयास करने से ही आपका जीवन सुंदर बनता है। विचार कीजिएगा, भारतवर्ष से लेके लंका का सेतु बांधा गया, कहते ब्रिज ओवर द ओशन, अन्य शब्दों में ब्रिज ओवर द इल्यूजन, ब्रिज ओवर द माया। लेकिन राम जो रामायण के हीरो हैं, एक सिंपल ह्यूमन बीइंग है। राम बता रहे हैं आप सिंपल लाइफ जी सकते हैं और तब भी उत्तीर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन द कोड ऑफ एथिक्स, द मोरालिटी नीड टू बी फॉलोड। राजा होते हुए भी उन्होंने केवल एक विवाह किया, अपने मन पर संयम रखा, साधारण भोजन किया, साधारण वस्त्र धारण किए। राम वॉज द बेस्ट मैनेजर, इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। रामायण से आप मैनेजमेंट स्किल सीख सकते हैं, रामायण से अपने जीवन को सुधार सकते हैं अगर आप अपना चरित्र, अपना कैरेक्टर राम जी जैसे बना लें। इसके लिए आपको रामायण का अध्ययन करना होगा, रामायण को पढ़ना होगा। केवल राम के भजन गाने से काम नहीं चलेगा। जब आप रामनवमी मनाते हैं उस समय ये प्रण कर लें कि इस वर्ष मैं राम के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करूंगा, कम से कम एक चीज तो मैं धारण कर लूंगा। राम हमेशा धर्म के रास्ते पर चले, सत्य के रास्ते पर चले। कैन वी डू दिस? हमारा जीवन रामायण है लेकिन हम राम नहीं बन पा रहे हैं। हमारी आधारशिला धर्म पर नहीं है, हमारी आधारशिला सत्य पे नहीं है। दैट इज द डिफिकल्टी। प्रयास करें, कोशिश करें, राम नाम जपते रहें। राम नाम को जपने से ही आपकी बुद्धि पवित्र होने लग जाएगी और रास्ता सही दिखने लग जाएगा। जय श्री